इसलिए आने वाली जो क्षण है उसमें होने वाला जो दुख है उसका त्याग करना चाहिए। इसलिए विचार किया गया दुख होने में हेतु क्या है,
तो बताया संजोगो है हेतु, त्यागने के योग जो ये दुख है उसका हेतु संजोग है। संजोग माने जड़ और चेतन का संजोग, जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष, चेतन आत्मा और जड़ ये सब पदार्थों को समूह, इनको जो संजोग है इनके साथ में जो एकता है वो इनका हेतु है। और संजोग का हेतु विद्या, इसका हेतु से विद्या ज्ञान है, पदभावात हानि, इसके अभाव को हानि कहते हैं, इसके नाश हो सब दूसरे का नाश हो जाता है। तो संयोग जो है और अस्मिता है एक ही चीज है, वहां अस्मिता जो है उसके बाद राग द्वेष अभिनिवेश है, तो मूल अस्मिता जो है वही उन राग द्वेष और अभिनिवेश को कारण है। अस्मिता के नाश होने से की राग द्वेष और मन भय सबका नाश हो जाता है, उनका कारण है, कारण के नाश होने से कार्य का नाश हो जाता है। और यहाँ संसारी की जो सुख दुख की प्राप्ति है उसमें भी संयोग हेतु है, संयोग का नाम अस्मिता है, तो वहां भी संयोग के नाश होने से उन संसारी की विधि का नाश हो जाता है। तो राग द्वेष और भय संसों का नाश हो जाता है अहंकार के नाश होने से, मैं के नाश होने से। मैं क्या चीज है, वो अविद्या को एक अंग है। अविद्या माने अज्ञान, अविद्या को क्या स्वरूप है, देह जो अनात्म पदार्थ है, आत्मा नहीं है देह, इसमें जो आत्म बुद्धि है इसका नाम अविद्या है। देह को ये समझना कि देह मेरी आत्मा है या देह मैं हूं, इसका नाम अज्ञान है। और देह जो नाशवान है अनित है, इसमें जो नित बुद्धि है मैं सदा रहूंगा, ऐसी जो बुद्धि है उसका नाम भी अविद्या है। तो देह जो है इसमें पवित्रता का जो अभिमान है कि मैं पवित्र हूं, पवित्र तो परमात्मा को स्वरूप है, परमात्मा के विषय जो ज्ञान अभी थी पवित्र है। और ये जो शरीर है ये तो एक इंद्र की महान अपवित्र चीज है, इस अपवित्र समूह के मन जो पवित्रता की भावना है, शरीर मन करके कहता मैं पवित्र हूँ, शरीर मैं हूँ, तो शरीर मैं हूँ यह भी अविद्या है। और मैं एक प्रकार से पवित्र ज्ञान मेरे शरीर पवित्र है यह भी ऐसा अविद्या है। और संसार के जितने भोगों के बीच के मां जो सुख बुद्धि है वो भी ऐसा अविद्या है। संसार के भोग जो है तो अनित्य नाशवान है, यदि सच्चा समझो तो दुख रूप है, उस दुख के भीतर के बीच में जो सुख बुद्धि है वो अविद्या है, विपरीत ज्ञान है। तो संसार के विषय भूमों के बीच के मां सुख बुद्धि और देह के भीतर में आत्मा बुद्धि और इन नाशवान पदार्थों में जड़ पदार्थों में नित्य बुद्धि और इस देहादि अपवित्र पदार्थों में पवित्र बुद्धि, ये जो विपरीत भावना है इसका नाम अविद्या है, इसी का नाम अज्ञान है। इसी के नाश से इसको सुख शांति मिल सके है, और नाश जो इसका सब यथार्थ ज्ञान से होता है
इसलिए उस यथार्थ ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत से साधन हैं, उनमें निष्काम भाव से कर्म करना एक साधन है, ईश्वर की भक्ति करना एक साधन है, ज्ञान की प्राप्ति के जो उपाय बताए उनका नाम साधन है, ज्ञान का साधन है, बहुत से उपाय हैं, उनकी तरफ ध्यान देकर के और अपने जीवन को उस कोटि का बनाना चाहिए। मन बड़ा पाजी है, ये एक प्रकार से धोखाबाज है, ये हमारे को बुरी शिक्षा देता रहता है, कभी तो संसार से निराशा उत्पन्न करता है कि भगवान की प्राप्ति होनी कठिन है, मुश्किल है, संभव है, तो इसका दिल टूट जाता है, यानी इसके मन में जब ये भाव आता है तो पुरुष थोड़ा साधन से ऊपर हो जाता है, ये इसकी मूर्खता है। मन में सार होना चाहिए, धीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता, ये भाव उत्पन्न होने चाहिए, यानी कि वृद्धि होनी चाहिए। यदि ये भाव नहीं है तो पुरुष ही नहीं है, मनुष्य ही नहीं है, उसमें मनुष्यता का अभाव है। ये सब ईश्वर की शरण होने पर भी अपने आप ही आ जाते हैं। जब ये निश्चय जाता है कि भगवान है और सब जगह है, तो हमारे परम हितेशी है, सबके परम हितेशी है, श्री रंग से भूता नाम जाता मान शांति मृत्यु, भगवान कहते मुझको सब भूतों का श्री जान करके कि मनुष्य परम शांति को प्राप्त कर लेता है। श्री माना भगवान कहते हैं कि हेतु रहित प्रेमी, हेतु रहित दयालु, वे हमारे हैं, हमारे परम हितेशी हैं, सदा हमारे पास रहते हैं। जो इस प्रकार से समझता है उसको भय कैसे सता सकता है, उसके पास में भय आ नहीं सकता। छोटा बच्चा जब माँ का आश्रय ले लेता है, माँ की गोद में बैठ जाता है, तो दूसरे बच्चों से नहीं डरता और न बिजाल या कुत्ते से भी डरता है, वो माँ की गोद में बैठा है, माँ उसकी सब प्रकार से रक्षा करती है, अपनी शक्ति के अनुसार माँ उस अपने बच्चे की रक्षा करती है। भगवान तो माँ से भी बढ़ करके है, माँ सब शक्तिशाली नहीं है, भगवान सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली हैं, वे सब प्रकार से समर्थ हैं। उस सामर्थ्य की गोद में हम बैठ जाएं तो निर्भयता अपने आप ही आ सके। मन से बैठने पर आगे जाकर प्रत्यक्ष में बैठ सकता है, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक एक प्रकार से उसका दर्शन भाषण सफल वार्तालाप सब मानसिक होते हैं। हमारे हृदय की माँ भगवान की शरण होकर के उस पर निर्भर होकर के उसके भरोसे पर हमारे हृदय में धीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता की वृद्धि अवश्य होनी चाहिए। जिस मनुष्य के बीच के माँ धैर्य नहीं, वीरता नहीं, गंभीरता नहीं, निर्भयता नहीं, वो फिर अपने को पुरुष कहे, पुरुषार्थी कहे, पुरुष वाला कहे, तो उसकी गलती है। पुरुष प्रयत्न जो है ये सब पुरुषार्थ से ही होता है, और भगवान का आश्रय लेकर के जो पुरुषार्थ किया जाता है वो अवश्य सफल होता है। तो भगवान का आश्रय लेकर के हमको प्रयत्न करना चाहिए। संसार के किसी पदार्थ का आश्रय लेना है या मूर्खता है, जिसको आगे जाकर के पश्चाताप करना पड़ता है,
کیونکہ دھوکے کی بات ہے. جیسے کوئی ایسا آپ کا لینا ہے میرے پاس میں بہت سے روپئے ہیں ان کے بعد سے میرا کام چل جائے گا تو میں ایک پرکار سے سب کچھ چھوڑ کر کے ایکانت میں جا کر کے اپنا بھجن دھیان کروں. تو یہ روپیوں کا آسر ہے, یہ مورتا ہے, کسی کارن سے تھی تو روپئے نشٹ ہو گئے یا سرکار نے لے لیے یا ہماری سمپتی کی آگ لگ گئی یا چور ڈاکو لے گئے, تو پھر ایک پرکار سے تھی اس کے ابھاؤ میں ہم بہت دکھی ہو کر کے مریں گے. کیونکہ متھیا وستو کا ہمیں آسرا دیا اور وہ متھیا وستو ہے کہ نہیں, اس پرکار کا جو آسرا لینا ہے وہ ملتا ہے. اسی پرکار کسی نے ایک بلڈنگ کا آسرا لے لیا مکان کا, اس مکان کے بھاڑے سے میرا کام چلے گا, تو وہ بھی ملتا ہے. وہ مکان ہے, وہ جڑ وستو ہے, ناسوان ہے, متھیا ہے, وہ دھوکے دینے والی چیز ہے. اسی پرکار کسی نے کوئی بستی کا آسر لے لیا, اس کا تتو سن لیا ہے, تو اس میں بھی دھوکے کی بات ہے. جیسے استری اپنے پتی کا آسرا لے لیتی ہے, پرش اپنے ماتا پتا کا گرو کا آسرا لے لیتا ہے, مجھے واستو کی ماں شاستری کے سنگت نشکام بھاو سے ہے, تب تو کوئی چنتا کی بات نہیں, وہ ایک پرکار سے اس کا ادھار ہو سکتا ہے, اس کا وہ سادھن ہے. کنتو مورتا کے کال سے ایسا ہی اپنے من کے ماں کسی کے لیے مان لیا, کوئی بندی پاکھنڈی آدمی ہے پر سمجھ لیا کہ اس سے ہمارا ادھار ہوا گا, اس کا آسرے کمزور ہے, کچا ہے, تو ایک پرکار سے اس کو دھوکہ ہو سکتا ہے. آسرا تو ایک پرماتما کا لینا چاہیے جس میں کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا. آسرا لینے کے جو بھی پرماتما ہی ہیں آسرا کو سرن کو سرن گرہن کرنے کی جو بھی پرماتما ہے اس کی سرن لینے چاہیے. پرماتما کو چھوڑ کر کے جتنے بھی سنسار کے پدارتھ ہیں ان کسی کی بھی سرن نہیں لینے چاہیے. ایک سدھانت تو یہ ہے کہ دھرم کو بھی آسر نہیں لینا چاہیے, پالن کرنا چاہیے. بھگوان کہتے ہیں سرو دھرمان پریتجیا مانو کرنے شرنم بڑھ جاؤ, اگر تم سب دھرموں کے آسرے کو چھوڑ کر کے کیول میری شرن آ جا. دھرم کا پالن کرنا نشکام بھاؤ سے بہت اتم ہے, کنتو اس کے اوپر نہیں بھر جانا یہ ایسی غلطی ہے. دھرم کا پالن کرنا صحیح آسر رہت ہو کر کے اناشرت کرم پلن کارجن کرم کروتی ہے. جو کرم کے پھل کے آسرے سے رہت ہو کر کے جو کرموں کا آسن کرتا ہے وہ یوگی اور سنیاسی ہے. اگنی کے تیاگنے والا, کریا کے تیاگنے والا یوگی سنیاسی نہیں ہے. کرتا کرم فلاسن تربت نراسری ہے. کرموں کے جس میں پھل اور آسکتی کا تیاگ کر کے اور اس آسر سے رہت ہو کر کے پرماتما کے دھیان میں نتربت رہنا چاہیے. تو جڑ وستو کا جو آسر ہے وہ دکھے دینے کی چیز ہے, تو اس لیے ان جڑ پدارتھوں کا کبھی آسر نہیں لینا چاہیے, ان کا کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اسی پرکار سے کوئی یہ آسر لے لیا کہ میرا لڑکا جو ہے اس کو خرچہ بھیجتا رہے گا اور میں من میں رہ کر کے ایکانت میں اپنے بھجن دھیان کر کے اپنا جیون بتاؤں, تو اپنے جیوکا کے لیے اپنے شریر نرواہ کے لیے جو لڑکے کا آسرا ہے وہ بھی دھوکے کی چیز ہے. آج وہ روپیہ بھیجتا ہے لیکن لڑکا مر گیا تو کون بھیجے گا, جھوٹا آسرا ہے. اور لڑکے کا من بدل گیا تو جیتے بھی نہیں بھیجے گا. تو آسرا تو ایک بھگوان کا لینا چاہیے. گرو پدارتھوں کا یا ویکتوں کا یا سنسارک پدارتھوں کا ان کا کبھی آسرا نہیں لینا چاہیے. अपने शरीर के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए कि मैं अपना रोजगार करके अपना पेट भर लूंगा। औरों की अपेक्षा ये बात ठीक है, किंतु तुम बीमार पड़ सकते हो, शरीर से बेकार हो सकते हो, ऐसा तरह करके जी सकते हो, तो शरीर का आसरा लेना भी असर जाता। प्रार्थ का भी आसरा काम की चीज नहीं, क्यों प्रार्थ अच्छा बुरा मिला हुआ रहता है, उसमें मनुष्य के मां आलस आ जाता है उसका तत्व तो न समझने के कारण से, तो आसरा तो किसी का भी नहीं लेना चाहिए। तुम्हें तो भगवान का तो ले, बोले भगवान का आसरा शरीर निर्वाह के लिए नहीं, आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए भगवान का आसरा लेना चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए यदि कोई आसरा ले तो दोष की बात नहीं है, किंतु एक प्रकार से थी आपने उसकी मूर्खता है। तो आत्मा के कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए तो भगवान का आसरा लेने में कोई दोष नहीं है। बोले कोई दोष तो नहीं है, किंतु बहुत ऊंचे दर्जे की चीज नहीं है। तो बोले फिर ऊंचे दर्जे की चीज क्या है? तो ऊंचे दर्जे की चीज यह है कि आत्मा के कल्याण के लिए आसरा नहीं लेना चाहिए। आत्मा का कल्याण हो चाहे मत हो, उसकी अपने मन में न इच्छा रखनी चाहिए, न उद्देश्य रखना चाहिए, न उसकी परवाह रखनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति करना, उसके शरण जाना जीव का कर्तव्य है, इसलिए उसकी शरण होना चाहिए, न कि मुक्ति के लिए। लड़के का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करना, जीव का कर्तव्य है कि ईश्वर की भक्ति करना, उसकी शरण जाना, किंतु मुक्ति के लिए नहीं। भगवान चाहे अपने को नरक में डाल देने कोई परवाह की बात नहीं है, किंतु अपने कर्तव्य से नहीं चूकना चाहिए। हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहे, भगवान चाहे अपने कर्तव्य का पालन न करें, भगवान भी अपने कर्तव्य का पालन करें, इसलिए हम कर्तव्य का पालन करें तो हमारा ओछापन है। और जब हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे और उसका बदला नहीं चाहेंगे, तो भगवान कहें कि ये मेरा भक्त मेरे से बढ़ कर, ये मेरा भक्त मुझसे भी बढ़ करके ये कहता है कि मैं भगवान का दास नहीं, कहता हूँ ऐसे भक्तों का मैं दास, जिनको मुक्ति की परवाह नहीं, किसी चीज की भी परवाह नहीं, और फिर निष्काम भाव से थी और सेवा करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों का ऋण। वाल्मीकि रामायण के बीच के ना भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा कि हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी, तुमने हमारे बहुत से कार्य किए हैं, वो हमारे सिर पर तुम्हारा ऋण है, और उस ऋण से मैं मुक्त होना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारे में कोई विपत्ति पड़े और मैं तुम्हारी मदद करूं तब तुम्हारे ऋण से मुक्त हूं, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हारे में विपत्ति पड़े, मैं अपने ऋण से मुक्त होने के लिए तुम्हारी विपत्ति देखना नहीं चाहता, चाहे मैं सदा के वास्ते ऋणी होकर के रहूं। तो ये निष्काम भाव है, भगवान की तरफ का निष्काम भाव। और हनुमान जी तो कभी मानते ही नहीं थे कि भगवान हमारे ऋणी, भक्त ऐसा मानने लगे तो एक प्रकार से उसे भक्त ने भक्त के मां ये करंग। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके कि और हमको रुपयों का दास होकर के नहीं जीना चाहिए, ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। ये सुन करके कभी आप आत्महत्या न कर लें। भाव यह है कि इस प्रकार का निष्काम भाव हृदय में होना चाहिए कि हमारा जीना सो हमारे लिए अपने भाव रूप है, हमारा इस प्रकार का सहकाम भाव से संसार में जीना है, सो ये मरने से भी बुरा है, यानी इतना नीचे दर्जे का घृणा करने की जो है, इसका अभिप्राय यह है कि ये द्वेष हमारे से दूर हो। मरना अच्छा का ये अभिप्राय नहीं कि हम ऐसे जिक्र क्या करेंगे, आत्महत्या करके मर ही जाओ तो अच्छा है। मरने के लिए कहना नहीं है, ये कहना इसलिए है कि ऐसा जीना जिंदगी है, अतः हमारे जीवन को सफल बनाना चाहिए, उस कोटि का बनाना चाहिए। मोर दास का वाय नर आशा, करे तो कहो फिर काम विश्वास। भगवान कहते हैं कि मेरा दास कहला करके और दूसरे मनुष्यों की भी आशा रखता है तो आप बताइए उसको मेरे ऊपर विश्वास कहाँ। तो भगवान पर जब निर्भर हो जाता है तो न किसी मनुष्य की परवाह करता है और न जड़ पदार्थों की, न मरने की परवाह करता है न जीने की, उनके सब समान है। वो तो एक प्रकार से थी सारी बात जो है सो प्रभु पर ही छोड़ रखी है, और जिस प्रकार से भगवान रखते हैं उसी में उसको आनंद प्रतीत होता है। ऐसा जीवन ही उत्तम जीवन है। तो समझना चाहिए अपने जीवन का आशय, शरीर निर्वाह का जो आशय है, पदार्थ को बनाना या किसी अपने समझो कि कोई प्राणी को, अपने पुत्र को या अपने भाई को, किसी को बनाना या किसी भी चीज का आश्रय लेना, ये मूर्खता है। विशेष बात समझ में नहीं आवे तो इसका जो जीवन है वो पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ के अनुसार ही सब जीते हैं, तो इसको पदार्थ के ऊपर छोड़ देना चाहिए। किंतु पदार्थ पर छोड़ने का अभिप्राय ये नहीं मान लेना चाहिए कि निकम्मा हो जाना चाहिए, कमकश हो जाना चाहिए, ये उसका अभिप्राय नहीं है। ये बात है फल के लिए, जो कुछ ईश्वर का जो विधान है उसे के लिए ये कहना है कि ईश्वर के विधान के अनुसार हमने जैसे कर्म किए थे उसके अनुसार ईश्वर का विधान बना है, और उसी के अनुसार सुख दुख लाभ हानि जय पराजय भविष्य में होंगे। इतने अंश को तो पदार्थ पर छोड़ देना चाहिए और नए जो कर्म करने हैं उनको पदार्थ पर नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, अर्जुन तेरा कर्म करने में अधिकार है, वो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है, तुम्हारे को करना चाहिए अपना कर्तव्य समझ करके। तो कर्म करने के अधिकार है और मा फलेषु कदाचन, और कर्म के फल में कभी अधिकार नहीं, तो वो अनधिकार चेष्टा है, वो करने से कोई लाभ भी नहीं। तो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय आदि की जो प्राप्ति है, जीवन मरण और ये सब जो है ये सब पदार्थ पर निर्भर करे, उस पदार्थ का नाम ही एक प्रकार से ईश्वर का विधान है। तो ये सब चीजें ईश्वर के विधान पर छोड़ देना में कोई दोष की बात नहीं है। तो अपने कर्तव्य का जो पालन है उसमें हम किससे मदद लें, पूरे मदद जो है सो बिना लिए ही भगवान दे रहे हैं, महात्मा लोग दे रहे हैं, शास्त्र दे रहे हैं, ये तुमको समझ लेना चाहिए। जो कुछ हमारे द्वारा अच्छे काम हो रहे हैं उसमें भगवान का हाथ है, महापुरुषों का हाथ है, अर्थात वे हमारे को हर प्रकार से मदद देने के लिए सदा तैयार रहते। तो फिर बात क्या है, तुम्हारे स्वभाव का दोष, वो तुम्हारे लिए बाधक है, उसका सुधार करना चाहिए। बोलो हमारे स्वभाव का सुधार क्या महापुरुषों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से नहीं होगा? बोले महापुरुषों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से तो होगा ही। ये तुमको मानना चाहिए कि जो कुछ हमारे में अच्छी बात है होगी वो ईश्वर की कृपा से होती है, उसी की कृपा से होगी। मैं तो इसमें निमित्त मात्र हूँ, ऐसा समझ करके काम करना चाहिए। जैसे भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं, प्रतिपक्षी सेना के योद्धा मेरे द्वारा मारे हुए हैं, निमित्त मात्र भविष्य सभ्य शासन, ये सब शासन अर्जुन तुम निमित्त मात्र बन जा। तो इसी प्रकार से हमको निमित्त बन जाना चाहिए। यदि वहां निमित्त मात्र अर्जुन नहीं बनता तो अर्जुन की बड़ी भूल समझी जाती थी, किंतु अर्जुन बन गया। तो इसी तरह से हम लोगों को निमित्त मात्र बन जाना चाहिए और अपनी बागडोर जो है इंद्रियों की मन बुद्धि की सब भगवान को सौंप देनी चाहिए। जैसे रथी आदमी अपने सारथी के हाथ में घोड़ों की बागडोर को सौंप देता है, अर्जुन ने जैसे भगवान को सारथी बनाया था, इसी प्रकार इस संसार सागर से पार होने वाली यात्रा के मां हमको भगवान को अपना सारथी बना करके और अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों की बागडोर जिनकी वृत्तियां रूप जो एक प्रकार से मन की चित्त की वृत्तियां है वो बागडोर है, तो भगवान के हाथ में सौंप देनी चाहिए और भगवान जैसे जैसे करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी युद्ध के समय में अर्जुन को जैसा कहते थे अर्जुन वैसा ही करता था। दूसरे लोग जो कुछ बकते थे उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था। इसी तरह हम लोगों को भी अपने मन बुद्धि इंद्रियां की सब की बागडोर भगवान के हाथ में सौंप देनी चाहिए और भगवान जैसे चलावे वैसे चलना चाहिए। और कोई विजय होती थी तो एक अर्जुन की विजय हुई, काम सब भगवान ही कर रहे। इसी प्रकार से जी काम हमारा सारा भगवान ही करे, और चाहे नाम हमारा कर दे भगवान उनकी मर्जी। नारायण नारायण शांति शांति शांति।